प्रणमामि पुनः पुनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विद्धसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पत्ये नमः। जय श्री राम। आज पांचवें दिन पूर्णाहुति के समय आप सब भगवान श्री राम संस्कृति धर्म और आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए भारतवासियों का भारत से बाहर यहाँ बहरीन देश में ये सुविधा उपलब्ध कराने का श्रेय उनको जाता है। वैसे रामायण तो हमारे दादा दादी बच्चों को बचपन में कहानी के रूप में पढ़ाते थे, सिखाते थे। ये संस्कार तो बच्चों को सूती के साथ मिलता है और हमारे रथ के अंदर मिला है। कान कान ने राम का नाम सुना है। आधुनिक युग में अब बालकों को ये शिक्षा थोड़ी सी दुर्लभ होती जा रही है। सो बच्चों को, नौजवानों को इस शिक्षा की आवश्यकता है। मर्यादा का ये ग्रंथ है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मानव को कैसे अपने जीवन में घर परिवार की मर्यादाओं को निभाना चाहिए उसका अनूठा अद्भुत अद्वितीय ये काव्य ग्रंथ आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा दो हमारे चाह से चार वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र षट शास्त्र हैं और 2 इतिहास हैं। तो रामायण और महाभारत हमारे इतिहास हैं। रामायण में कल हमने 4 दिन से हम बालकांड में भगवान रामचंद्र का दिव्य भगवान विष्णु का यज्ञ में यज्ञ के उस पायसम में प्रवेश करके दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होना और गुरु जी की शिक्षा वशिष्ठ जी के लेकर विश्वामित्र के संग, इससे एक संकेत मिलता है कि एक गुरु तो वशिष्ठ है लेकिन दूसरे विश्वामित्र गुरु का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। से गुरु बहुवचन में प्रायः होता है, दीक्षा देने वाला, शिक्षा देने वाला गुरु, यहाँ ये भी संकेत मिलता है। विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र के जीवन में जो दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्होंने अपने तप से प्राप्त किए थे उनको अर्पण किया। साधु संत के पास अस्त्र शस्त्र भी होते हैं तो किसी का विनाश नहीं है, वो भी भगवान को अर्पण होते हैं। ये बड़ा अद्भुत यहाँ रहस्य का उद्घाटन होता है। और ब्रह्म ऋषि के यज्ञ का संरक्षण करके भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में माधुर्य विवाह का प्रसंग जनकपुर में हमने भगवान रामचंद्र के पराक्रम, भगवान शंकर के धनुष का प्रत्यंजय चढ़ाने का दर्शन किया और दशरथ महाराज प्रसन्नता के साथ बारात लेकर आए और चारों पुत्रों का विवाह, ये सामूहिक विवाह महाराज दशरथ ने किया 4 पुत्रों का एक ही समय थे। और जैसे ये वापस अयोध्या पहुंचते हैं तो फिर बालकांड समाप्त होता है जिसमें भगवान की भगवत्ता का दर्शन है। कल अयोध्या कांड दो दिन से सुनते आ रहे हैं। अयोध्या कांड संबंधों का, रिश्तों का जो निभाने का, निर्वाह का भरत का चरित्र है भागवत पुरुष का, वो अयोध्या कांड का रत्न है कि भाइयों का प्रेम कैसा होता है, राज नहीं चाहिए, राम का चरण चाहिए, राम का पद चाहिए, राज का पद नहीं चाहिए, राज लक्ष्मी नहीं, राम का सेवा चाहिए। ये भरत का जो अद्भुत चरित्र है इसका हमने श्रवण किया और चित्रकूट में भगवान रामचंद्र के खड़ाऊ को राज सिंहासन के ऊपर विराजमान करने का निर्णय हुआ। भरत जी वापस लौट के शत्रुघ्न को राज कार्य में नियुक्त किया और स्वयं नंदी ग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगे जटाएं बांधकर। और अत्रि ऋषि के आश्रम से रामचंद्र का जैसे आगे बढ़ना हुआ है तो अरण्य कांड शुरू हुआ, और अरण्य कांड में भगवान के अवतार का जो मुख्य उद्देश्य होता है साधुओं को दर्शन दे के आनंद देना और असुरों को संहार करना, ये कार्य रामचंद्र का अरण्य कांड में हुआ। सुतेक्षण ऋषि को दर्शन दिया, सरभंग ऋषि को दर्शन दिया, 10 साल तक रामचंद्र दंडकारण्य में ऋषियों के आश्रम में जाकर उनको कृपा करके उनके तपस्या को भगवान ने स्वीकार किया, उन्होंने अपना जप तप भगवान को अर्पण किया। श्री कृष्ण अर्पणम, भगवत अर्पणम, राम अर्पणम, ये सब चीजों की सार्थकता है। सभी चीजें तब सफल हैं जब भगवान को अर्पण हो। और फिर सुरपंखा ने दूसरा जो भगवान के अवतार का उद्देश्य होता है असुर संहार का, उसका मुहूर्त शुरू किया और उसके बाद 14,000 रावण के जनस्थान के खरदूषण त्रिसरा और के साथ सेना का समापन करके और उसके उपरांत कल हमने अरण्य कांड में मारीच के द्वारा मृग बनना और छाया सीता रावण के विनाश के लिए रावण ले गया और असली सीता अग्निदेव के पास इमानत के तौर पे, धरोहर के तौर पे रखी गई और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के संग सबरी माँ के आश्रम तक पहुंचे तो अरण्य कांड पूर्णाहुति पे पहुंचा और आगे किष्कंधा कांड में सुग्रीव के साथ मित्रता और फिर सुग्रीव के सहयोग से सीता की खोज का कार्य शुरू। और उसके अंतर्गत कल हम 3 दिशाओं से तो वानरों के सारे युद्ध वापस आए और निराश होके आए, दक्षिण दिशा में गए हुए वानरों का जो समूह था अंगद के नेतृत्व में जामवंत और हनुमान नल नील के संग, उनका कल हमने यहां विराम दिया था कि समुद्र के तट पे, हिंद महासागर के तट पे, जहां अब ये समझ लीजिए रामेश्वर और सेतु बंद के बीच में इस क्षेत्र में ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। आगे समुद्र है, महीना पूरा हो गया है, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा। और यहां संपाति जटायु के भाइयों ने उनको इतना बता दिया कि सामने लंका में सीता है, बाकी 100 योजन कौन कैसे जाएगा, अब आप ये अपनी तैयारी कीजिए। और संपाति को इन्होंने स्नान कराया समुद्र में, संपाति के नए पर निकल आए। समान संपाति ने कहा मेरे भाई जटायु ने राम की सेवा की है तो मेरे को भी राम का दर्शन करना चाहिए, लेकिन उसने बलिदान दे के सेवा की थी, मैं भी सारी अपनी गीधों को इकट्ठा करके लाता हूं और रावण को मार के सीता को लाके रामचंद्र को दे के फिर दर्शन करूंगा। तो संपाति अपने आप उड़ के गीध सेना को इकट्ठा करने के लिए चला गया, वो आएगा आगे, उसकी सेवा भी होगी। और यहां सब वानर कह रहे हैं 100 योजन कैसे जाएंगे, तो हरेक ने अपना जितनी उसमें शक्ति सामर्थ्य था उसकी बात की। और जामवंत तब बोल उठे कि हनुमान आप क्यों चुप हो, मैं तो 100 योजन क्या ये पृथ्वी का चक्कर लगा सका हूं। जामवंत ने कहा तो मैं पृथ्वी का चक्कर लगा सकता हूं, भगवान वामन देव का जब चरण ऊपर उठा था तो मैं उसकी परिक्रमा की थी, तो मैं तो ब्रह्मांड की परिक्रमा कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन हनुमान आप क्यों चुप बैठे हो, तो हनुमान ने हाथ जोड़ के कहा कि आप सब जो वरिष्ठ हैं जैसे आज्ञा करेंगे तो हनुमान ये कार्य तो आपको करना चाहिए। तब हनुमान को याद आ गया अपना सारा बल। उत्तरकांड रामायण में एक प्रश्न राम जी पूछते हैं अगस्त ऋषि से। अगस्त ऋषि सब ऋषियों को लेके राज तिलक के बाद आते हैं और राम जी को कहते हैं आपने बहुत बड़ा कल्याण विश्व कल्याण का कार्य किया है। महाभारी भयंकर राक्षस रावण को, कुंभकर्ण को और मेघनाथ जो तो अविजय था, तो अजय था, इंद्र भी उसका बंदी बन चुका था, आपने बड़ा उपकार किया है। तो रामचंद्र ने बड़ी निम्रता से प्रश्न पूछे हैं, तो उन प्रश्नों के अंतर्गत एक प्रश्न आता है और हनुमान सामने बैठा है और राम जी कहते हैं अगस्त ऋषि आप इन सब राक्षसों की वीरता का वर्णन कर रहे हैं, मैंने युद्ध में मेरे आंखों से इस पवन पुत्र हनुमान की वीरता को देखा है। अब मेरा ये प्रश्न है कि जब ये सुग्रीव के साथ थे तो बाली से सुग्रीव क्यों डर रहा था? तो अगस्त ऋषि ने हनुमान की उत्पत्ति की कथा बताई। शंकर जी के मोहिनी मूर्ति के दर्शन के समय जो शक्ति का हास हुआ, सप्त ऋषियों ने उसको घट में संभाल के रखा कि आने वाले समय में राम जी की सेवा में ये शंकर जी का अंश वायुदेव ले जाकर, और अंजनी जो एक अप्सरा बृहस्पति की सेवा में थी और शराब के कारण धरती के ऊपर वानर राज केसरी की पत्नी के रूप में आई थी उसके उदर में स्थापित करेंगे। तो हनुमान जी रुद्र का अंश है, वायु पुत्र हैं, अंजनी नंदन भी कहते हैं और केसरी नंदन भी कहते हैं। केसरी पिता का नाम है, अंजनी माता का नाम है। अंजनी को श्राप इतना ही था जैसे जन्म दोगी आप बालक को फिर आप वापस अप्सरा आ जाना। तो अगस्त जी कहते हैं जैसे बालक को जन्म दिया मां अंजनी ने, बालक ने कहा भूख लगी है क्या करूं, उसको तो जाना था। सूर्य उग रहा था, बोला ये देखो सामने सूर्य उग रहा है ना, लाल लाल ऐसे पके हुए फल खाना बेटा। हनुमान जी का ऐसे और कहां ढूंढू, इसी को खाता हूं। और हनुमान जी ने जंप लगाई सीधी सूर्य की तरफ और सूर्य ने तो देखा ये हमारे वायुदेव का पुत्र है, बालक है, पहचान गए राम की सेवा के लिए आए हैं। उस वक्त राहु को सूर्य को ग्रहण लगना था, राहु आ रहा था, राहु ने बोला मुझसे पहले दूसरा कौन सा ग्रहण सूर्य के ऊपर जा रहा है। तो राहु भय के मारे वहां से भागा, इंद्र को जाके बोला क्या हो रहा है, यहां सब आपका जो शासन है उसमें परिवर्तन हो रहा है क्या। इंद्र वहां से एरावत पे चढ़ के आए और हनुमान ने सफेद एरावत को देखा, समझा ये नया फल है, एरावत की ओर लपका। इंद्र भयभीत होके अपने वज्र को चलाया और हनुमान की ठोड़ी के ऊपर वज्र लगा। हनुमान शब्द का अर्थ है जिसका जबड़ा टूटा हुआ है, और वो वज्र से टूटा, तब तक उसका नाम हनुमान नहीं था। हनुमान शब्द का अर्थ है जिसका जबड़ा टूटा हुआ है और वो वज्र से टूटा है। वैसे जिसने कोई मान नहीं है, दास अनुदास सेवक है, हनुमान हनुमान, तो जिसके मान अपने मान की इच्छा नहीं है और जो सेवा में सदा हाथ जोड़ के बैठे वो हनुमान। लेकिन संस्कृत में हनुमान का अर्थ है जिसकी ठोड़ी टूटी हुई है। अब हनुमान मूर्छित हो गया, पिता वायुदेव गोद में लेके बैठे और क्रोध आ गया, वायुदेव ने हवा का बहना बंद कर दिया, सबकी हवा बंद हो गई सांस लेना। सब देवता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा आपने वो बालक के ऊपर प्रहार किया है वज्र का, चलो उसको आशीर्वाद देते। सब वहां आए हैं, ब्रह्मा जी ने कहा पहले तो करमंडल से गंगा जल छड़का, बालक को सचेत हो गया, बोला हनुमान आज से ब्रह्मास्त्र जो मेरा है आपका कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मास्त्र से आप मुक्त हो गए। सूर्य ने कहा मेरा एक अंश आपको मैं तेज देता हूं। यमराज ने कहा आपको कालदंड का भय नहीं रहेगा। इंद्र ने कहा आप रूप बदल सकते हैं, वज्र मेरा आज से आपको कुछ नहीं होगा, आपका शरीर ही वज्र का हो गया, आपको तो लोग कहेंगे बजरंगी, आपका नाम ही बजरंग बली हो जाएगा। तो सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया। अब इतने सारे देवताओं का आशीर्वाद, जब थोड़े हनुमान बड़े हुए तो इतनी सारी शक्ति कहां संभाले, वो देवताओं के आश्रम में जाए, किसी देवता को ऐसे ऊपर उठाए, देवता बेचारा, वो कोई ऋषि ऊपर जाए फिर नीचे, और उनको इतना ऋषियों को तंग करने लगे एक दृष्टि से। एक जगह शेर को और हाथी को पीछे पूंछ दोनों की बांध दी, उसको बड़ी कला आती थी। वो हाथी किसी ऋषि के दरवाजे पे खड़ा, ऋषि बाहर निकल नहीं पाए सुबह सुबह उठ के, तो ऋषियों ने एक शराब दे दिया कि तुम्हारा बल तेरे को याद नहीं रहेगा, हनुमान जब कोई याद दिलाएगा तब याद आएगा। तो इसलिए अगस्त ऋषि कहते हैं हनुमान को अपना बल ऋषियों के शराब के कारण भूला हुआ था, आज जामवन ने याद दिलाया, और जामवत के याद दिलाने से हनुमान को अपने सारी शक्ति का फिर वापस स्मृति हो गई। एक कारण ये बताया। दूसरा कारण अगस्त ऋषि कहते हैं कि जब पिता केसरी ने देखा कि बहुत शिकायतें रोज आ रही हैं, बहुत शिकायतें रोज हनुमान की आने लगी, तो इसको पढ़ाने भेजना चाहिए, कहां ने भेजे, बोला सूर्य के पास, सूर्य से ज्यादा विद्या किसके पास है, वो तो भगवान श्री कृष्ण का शिष्य है, भगवद गीता का सूर्य देव, तो सूर्य देव के पास केसरी ले गया हनुमान को। सूर्य देव ने कहा शिक्षा तो मैं दूं, लेकिन मेरे को तो रोज काम करना है, मेरा रथ चलता है, चलता रहता है, सूर्य देव कर्म योगी है, कभी रेस्ट नहीं करते हैं, और भगवान ने उसी को उपदेश दिया है भगवद गीता का, एक ही सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, और उसको भगवद गीता का उपदेश दे के भगवान ने पूरे विश्व को ये विश्वव्यापक गीता की शिक्षा को यूनिवर्सल जो है वो घोषित कर दिया है। एक सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है और एक भगवद गीता की शिक्षा सबको एनलाइटन कर सकती है। कर्म योगी सूर्य, सूर्य ने कहा हनुमान को मेरे को शिक्षा देने में बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन बैठेगा कहां, मेरे रथ पे पहले ही 7,000 वाल्कल्य ऋषि बैठे हुए। हनुमान ने कहा मैं आगे आगे चलूंगा। बोला चलोगे तो पीठ मेरी तरफ होगी, शिक्षा कैसे दूंगा। बोला नहीं, आपकी तरफ मुंह करके चलूंगा। एक साल तक हनुमान ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की, और फिर सूर्य देव ने कहा आप गुरु दक्षिणा क्या दोगे। बोला जो आज्ञा करो गुरुदेव। बोला मेरा बेटा सुग्रीव है, गुरु दक्षिणा में तुम्हें सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ना है, इसलिए हनुमान हमेशा सुग्रीव के साथ रहा, क्योंकि गुरु दक्षिणा में ये वचन देकर आया था वहां। और अब अगस्त ऋषि कहते हैं इसलिए हनुमान को अपना सारी शक्ति ऋषि के श्राप के कारण भूली हुई थी, और आज जामवंत ने याद दिलाया तो हनुमान ने उठ के कहा ये कार्य मैं अभी करके आता हूं। कल हमने इतना कहा था कि हनुमान जी की भक्तों को शिक्षा ये है कि कोई काम करने को ले जब सुझाव चल रहा है तो ऐसे मैं कर लूंगा ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। भले सब लोगों में वरिष्ठ बुद्धिमान लोग अगर आशीर्वाद देके आपको काम कोई सौंप दें तो सबके सहमत और आशीर्वाद से वो काम करने में आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए हनुमान जी ने ये नीति अपनाई, जब सबने कहा आप हनुमान ये कार्य कीजिए तब हनुमान ने कहा। अब हनुमान ने अपना विराट रूप, बहुत बड़ा विराट रूप धारण किया और सबको कहा आप यहीं रुकिएगा, अब मैं गया लंका में से सीता का पता लाया, फिर साथ सब चलेंगे। ये हनुमान का टीम वर्क का भाव है कि हम सब साथ आए हैं और श्रेय सबको मिलना चाहिए, साथ में काम मैं करके आऊंगा लेकिन काम हम सबका है। हनुमान महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़े, यहां से अब सुंदर कांड शुरू हो रहा है। सुंदर राम, राम सुंदर, सुंदर सीता, सुंदर और सुंदर कांड, सुंदर अब हनुमान जी की यात्रा शुरू हो रही है। अब यहां इतना कह दे कि दो प्रकार के लोग इस संसार में होते हैं, एक रावण जैसे होते हैं जो भगवान की लक्ष्मी को भोगने का प्रयास करते हैं, भगवान को वन में भटकने को छोड़ देते हैं और सीता का अपहरण करते हैं, ये हुए रावण जैसे लोग, वो लक्ष्मी को भोगते हैं, भगवान नारायण को बाहर छोड़ देते हैं। दूसरे हनुमान जैसे होते हैं जो उस भगवती लक्ष्मी को लाके भगवान से वापस मिला के उसकी सेवा में लगाते हैं। तो दुनिया में दो प्रकार के यही हैं। अब हमको कौन से पक्ष में जाना है ये देखना चाहिए। जो केवल लक्ष्मी के भोग के पीछे लगते हैं, भगवान को भूल देते हैं, चाहे सोने की लंका है तो भी समाप्त हो जाती है। और जो हनुमान जैसे होते हैं कुछ भी नहीं है तो भी आज उसके गुण गाए जा रहे हैं, जगह जगह उसकी पूजा हो रही है। तो आज हनुमान की ये यात्रा, महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ के हनुमान ने राम जी का ध्यान किया और विराट रूप धारण किया, और जैसे राम जी का बाण निकलता है और अपने निशाने पे पहुंचता है, ऐसे हनुमान ने जय श्री राम कहकर और छलांग लगाई है। पीछे पर्वत का जो बैक प्रेशर पड़ा है उससे झरने निकले हैं, कई पेड़ उखड़ के उनके पीछे और समुद्र में गिरे हैं, और आकाश मार्ग में एक देवताओं का जाने का मार्ग अलग होता है, उस मार्ग में हनुमान ने जाके प्रवेश किया है और वहां से हनुमान ऊपर उठा है। अब हनुमान की जो यात्रा है 100 योजन की, इसमें से जो शिक्षाएं हैं भक्त को भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति से भगवान मिलते हैं, और भक्ति देती है भगवती सीता यहां या भगवती राधा, ये भगवान की भक्ति देने का अधिकार इनको है, भगवान की अलादिनी शक्ति को वही भक्ति देती है। इसलिए भगवान के हमारे पास कहते हैं मातृ भगवान और पितृ भगवान, भगवान एक है लेकिन उसका माता का रूप है राधा सीता लक्ष्मी, और पिता का रूप है कृष्ण है राम है नारायण है, ये पिता का रूप है। तो भगवान पिता है और माता भी है, पिता माता दोनों भगवान है। तो माता का जो भाव भगवान का है, जो भगवान के चरणों में पहुंचाती है, तो भक्ति प्राप्त करने के लिए अब जा रहा है मानो हनुमान। तो भक्ति के रास्ते में बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं और उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए, ये हनुमान की यात्रा से हम सीखेंगे आज। अब देवताओं ने कहा काम तो हमारा सिद्ध करने जा रहा है। जैसे ही लंका में सीता पहुंची थी, ब्रह्मा जी ने देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी अब हमारा काम हो गया, सीता जी को रावण लाया है, राम आएगा और रावण का वध होगा और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कहीं सीता राम के वियोग ने प्राण न त्याग दे, इसलिए इंद्र तुम जाओ और दिव्य अमृत का खीर बनाकर स्पाइसम सीता को देकर आओ, जिससे उसको न भूख लगे और अन्य नींद सताए, क्योंकि खाएगी नहीं, रावण का कुछ नहीं खाएगी वहां सीता। अब ब्राह्मण के रूप में इंद्र नीचे उतर के आए हैं और सीता को कहते हैं मैं देवता हूं, आपके लिए ब्रह्मा जी ने ये प्रसाद भेजा है। और उस वक्त उन्होंने कहा कि तुम असुर नहीं हो, कैसे पता लगे? तो इंद्र अपने रूप में आए हैं, माँ सीता ने वो खीर लेने के बाद राम को अर्पण किए, लेकिन आज लक्ष्मण को अर्पण किए। मैंने बोला गलती बहुत बड़ी कर दी, लक्ष्मण का अपमान कर दिया, लक्ष्मण को कटु वचन कह दिए और वो उसकी कृपा के बगैर वापस राम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने राम को अर्पण किए खीर, फिर लक्ष्मण को अर्पण किए, फिर उस खीर का पान किया है। अब वो सीता माँ को दिव्य उस खीर के बाद भूख नहीं है, नींद प्यास परेशानी नहीं है। और यहाँ देवताओं ने कहा हनुमान हमारा कार्य करने जा रहा है, बल कितना है पता तो लगे। तो बल की परीक्षा लेने के लिए समुन्द्र के अंदर एक पर्वत छुपा था, उसका नाम है मिनाक पर्वत, और ये मिनाक पर्वत को वायु देव ने बचाकर इंद्र की वज्र से समुद्र में शरण दिया था। आज समुद्र देव कहते हैं, सागर के नाम, सागर महाराज के नाम से हमारा नाम सागर हुआ। सागर कहते हैं ना समुद्र को, ये महाराज सागर जो गंगा जी को जिसके पुत्र धरती पे लाए उसके पीछे इसका नाम सागर हुआ है। वैसे समुद्र कहते हैं क्योंकि इसके इसके पेट में मुद्राएं होती है, मोती होते हैं, इसका इसके लिए इसको सब मुद्रा मुद्रों जिसकी पेट में मुद्राएं हैं, तो ये सागर समुद्र ये इसके पेट में बड़ी मुद्राएं हैं और उसके अंदर मिनाक पर्वत को समुद्र कहता है। तुम खड़े हो जाओ बाहर निकल के और हाथ जोड़ के पुरुष का रूप धारण करके हनुमान को कहो थोड़ा विश्राम करे, रास्ते में लंबा सफर है, कुछ फल फूल खा ले फिर आगे बढ़ो। और मिनाक पुरुष आकृति में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, बजरंग बली रुक जाइए, थोड़ा विश्राम कीजिए, फल फूल खाइए। वो तो अपनी स्पीड में आ रहा, उनका छाती लगा, फिर कहा राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में विश्राम नहीं है, सीता जी का पता नहीं लगेगा तब तक मैं कहीं रुकूंगा नहीं, अब न फल खाऊंगा और ना यहां विश्राम करूंगा, आपके आतिथ्य को स्वीकार करता हूं और अब आप रास्ते से हट जाइए, मेरे को आगे जाने दीजिए। इसको कहते हैं सतोगुण की बाधा। सतोगुण में सुख मिलता है, सतो संजायते सुखम, ज्ञानम और सुख मिलता है, ये सतोगुण की बाधा है। भोग मिल जाएगा, भक्ति करेंगे तो भोग मिल जाएगा, लोग बेटा देंगे, प्रसाद देंगे, छप्पन भोग खिलाएंगे, ये भोग मिल गया, और भोग में ही अटक गए, आगे नहीं बढ़े तो भगवान नहीं मिलेगा। तो हनुमान ने इस के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की? त्याग से, नमस्कार किया, आदर किया, लेकिन भोगा नहीं। देवताओं ने देखा बल तो बहुत है, बुद्धि है कि नहीं कैसे पता लगे? बल हो और बुद्धि न हो तो भी विजय नहीं होगा। बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सांपू की माता सुरसा को कहा, जाओ हनुमान के रास्ते में खड़ी हो जाओ। सांप की मां सांप को जन्म लेके ही खा जाती है, परीक्षा में बहुत वो कठोर होती है। सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो गई, हनुमान को बोला, ब्रह्मा जी ने मुझे वचन दिया है, मेरे रास्ते में जो आएगा इसको मुंह के अंदर जाना पड़ेगा। हनुमान कहता है, मां सीता का पता लगा के राम को सुना के आपके मुंह में आ जाऊंगा, उसमें क्या? बोला, नहीं नहीं, कौन आता है वापस किसी के मुंह में, अभी इसी वक्त मेरे मुंह में आओ। बोला, देखो मैं कितना बड़ा हूं, आपका मुंह इतना छोटा है, अंदर कैसे जाऊंगा? सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान ने और आकार बढ़ाया, सुरसा ने आकार बढ़ाया, हनुमान छोटे बन के अंदर चले गए और बाहर निकल के आए। मां अभी आपका ब्रह्मा का वचन पूरा हो गया? सुरसा ने तो मारना नहीं था, प्रसन्न होके कहा, बेटा विजयी भव, जाओ तुम्हारे को सफलता मिले। ये परीक्षा में, बुद्धि की परीक्षा में आज उत्तीर्ण हुए हैं हनुमान जी। ये कौन सी बाधा है? ये रजोगुण की बाधा है। रजोगुण क्या? तुम बड़ा कि नहीं, मैं बड़ा हूं, नहीं तुम बड़ा हो, नहीं मैं बड़ा हूं। रजोगुण का मतलब है एक दूसरे से आगे भागने का प्रयास करना, आशा और सुरसा, रसा का मतलब जिसमें भोग रस जितना लोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये रजो राग आत्मिक, इसमें इतनी आसक्ति हो जाती है, पकड़ो पकड़ो और पकड़ो, रजोगुण का ये। और इसके ऊपर हनुमान ने विजय कैसे प्राप्त की? ये अहंकार है, मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं। और हनुमान ने निम्रता से छोटे बन के अंदर जाके बाहर निकल के आ गए। तो दूसरी रजोगुण में अहंकार बढ़ता है, तब निम्रता से हाथ जोड़ के छोटा बन जाना चाहिए। किसी महात्मा ने कहा, छोटा बन जाओगे ना, जैसे चुंटी छोटी होती है, प्रसाद के डब्बे में बैठ जाए तो यहां से जाते हुए हमारे साथ वृंदावन बगैर पासपोर्ट और वीजा के चली जाएगी, और वृंदावन उसको मिल जाएगा मुफ्त में। तो कोई छोटा बन जाएगा तो भगवान के पास जाने में रुकावट नहीं है, बड़ा बना तो परेशानी है। अब तीसरी बाधा हिरण्याकश की बेटी, हिरण्याकश्यप की बेटी विप्रमुखी राक्षस की पत्नी सिंहिका, छाया गृहिणी। छाया कहते हैं जो हमारा रिफ्लेक्ट जो पड़ता है, किसको क्या कहते हैं, शेडो, और रंग का होता है काला। और हनुमान आकाश में जा रहे थे, उनका जो नीचे शेडो पड़ता था उसको पकड़ लिया, हनुमान का चलना बंद हो गया। हनुमान ने जीते देखा ये क्या हो गया, तो हनुमान ने देखा सिंह की मुंह फाड़ के बैठी है, उसका मुख खुला हुआ है। हनुमान ने ऊपर से जैसे उसके मुख के अंदर से पेट में जाके दिल को चीर के फाड़ के मार के सिंहिका को हनुमान आकाश में उड़ा। ये है तमोगुण की बाधा। पहली सतोगुण, दूसरी रजो, ये तमोगुण है। तमोगुण क्या है? तमोगुण में अंधकार, काला अंधकार होता है, अंधकार काला, तमो तम का मतलब अंध है वैसे। और अंधकार में इस काले में खास बात क्या है? छाया को पकड़ने का मतलब किसी आदमी भले के अंदर दोष देखना, भले आदमी में दोष देखना। अंदर पड़िए चेहरा, हरे कृष्ण। भले आदमी में दोष देखना, ईर्ष्या, ये जो ईर्ष्या है ये सबसे ज्यादा बंधन में डालने वाली। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को 9वें अध्याय में कहते अनुसूयवे, क्योंकि तुम्हें मुझसे ईर्ष्या नहीं है इसलिए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का तुम अधिकारी हो। जब तक ईर्ष्या है, दूसरे से जलन है, दूसरे में दोष देखने की दृष्टि है, तब तक आगे बढ़ के भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो आज ये हनुमान के रास्ते में तीसरी बाधा सिंह का, जो ईर्ष्या की प्रतीक है, तमोगुण अंधकार है, हनुमान ने इसको जड़ से उखाड़ के हृदय तोड़ के आकाश में उड़े हैं। तीन बाधाएं तीन गुरु को पार कर दिया और भक्ति तीन गुरु को पार करने के बाद मिलती है। अब विचारे न भक्ति योगे न सुगुणान समतैते तान ब्रह्म भूया ये कल्पते। उस स्तर के ऊपर जाने के लिए तीनों गुणों से ऊपर, तो हनुमान जी तीनों गुणों की बाधाओं को पार किया है। अब त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका में उतरे हैं और उतरते ही हनुमान ने देखा अब दिन है, चारों ओर लंका की सुरक्षा को देखा, दीवार को देखा, चार गेट को देखा, बाहर सुरक्षा व्यवस्था उसका चारों ओर से पानी की सुरक्षा है, बिजली की सुरक्षा है, विमान पुष्पक कहाँ खड़ा है, ये सब देखा। और जब शाम हुई तब छोटा सा रूप धारण किया, कहते हैं मार्जर बिल्ली जितना साइज हनुमान का रूप तो हो ही था, लेकिन छोटा सा रूप धारण किया और दीवार से जैसे कूदने लगे। उस वक्त वास्तु लंकनी देवी सिक्योरिटी की जो इंचार्ज थी लंका की, उसने कहा चोर कहां जा रहे, पकड़ लिया। कितनी सुरक्षा, बिल्ली नहीं जा सकती थी दीवार कूद के, इतनी सुरक्षा रावण की लंका की थी। हनुमान ने मुड़ के देखा, क्या बोलती है, चोर, मैं चोर के रावण चोर, सीता को बहु उठा के आया वो चोर, या मैं सीता को ढूंढने जा रहा हूं मैं चोर। नीचे हनुमान ने उनकी ओर देखा, वो आक्रमण करने आई। हनुमान ने कहा स्त्री है, सीधा हाथ मारा तो मर जाएगी, उल्टा हाथ मारा और नीचे गिरी धड़ाम से लंकनी, मुंह से खून निकला। तब कहती है ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जब कोई वानर सीता को ढूंढते हुए राम का दूत आए और तुम्हें नीचे गिराए और खून निकले, समझ लेना लंका का विनाश होने वाला है। उसको याद आ गया, उसने कहा बेटा अब मेरी आशीर्वाद है, जाओ तेरा कल्याण हो। ये चौथी बाधा है भक्ति के रास्ते में। क्या बाधा है, जब आप थोड़ा सा भक्तों के संग में जाने शुरू करोगे ना नौजवान छोटी उम्र में, तो आपके दोस्त कहते हैं ये थोड़ी उम्र भक्त बनने की, ये थोड़ी उम्र भगवान का नाम जपने की है, अभी चलो थोड़ा घूमें फिरें खाएं पिएं। अरे नहीं मैं मंदिर जाना है मेरे को, ढाई मंदिर क्या करेगा, बाहर में चलना है। अब वो मंदिर जाएगा उसको कहेंगे तुम चोर हो, तुम खराब हो। अब क्या हनुमान चोर था कि रावण चोर है, चोर रावण था और आरोप हनुमान पे लग रहा था। ये बाधा लंकनी वाली भक्ति में, अपने मित्र बंधु बांधव आपको भगवान की तरफ जाने में कहेंगे मत जाओ कहां जा रहे हो, उस वक्त थोड़ा सा आपको हनुमान की तरह मारना नहीं है, थोड़ा कहना है कि आप थोड़ा सब्र कर, 10-20 साल के बाद आपको पता लगेगा कि आप सही है कि हम सही, और 20-21 साल लगते हैं तब वो कहेंगे आप ठीक थे हमसे गलती हो गई। अब हनुमान जी ने लंका में पूरा लंका का देखना शुरू किया तो सीता कहीं उनको दिखाई नहीं दी। वैसे रावण के महलों में देखता है तो मंदोदरी को देखा कि शायद ये सीता हो, इतना का सीता सो नहीं सकती है राम के वियोग में, ये सीता नहीं हो सकती है। तांत्रिक शास्त्र एक रामायण में लिखा है कि वैसे हनुमान के मन में क्या आया, उसको तंत्र विद्या आती थी, उन्होंने मंदोदरी की और रावण की चोटी को तंत्र से बांध दिया। सुबह उठ के रावण देखता है कि चोटी बंधी हुई है, अब ये खुलेगी नहीं, रावण बड़ा पंडित था उसको मालूम था ये खुलेगी कैसे, बोला मैं मंत्र पढ़ूंगा और मेरी पत्नी मेरे को थप्पड़ मारेगी तब खुलेगी, उसको ये मालूम था। और हनुमान ने सोचा अब इसको पहले पत्नी से पिटवाते हैं फिर आगे देखेंगे क्या होता है। अब रावण कहता है मंदोदरी में मंत्र पढ़ता हूं तुम मेरे को थप्पड़ मारना, बोला पति देव ये तो पतिव्रता की उल्लंघन हो जाएगी, बोला अभी हम दो हैं, सुबह हो गई तो सारा दुनिया देखेगी फिर आप पीटोगी अच्छा नहीं लगेगा, और इसका इसके तंत्र में मंत्र जब मैं पढ़ूंगा तो जोर से थप्पड़ मारना, आस्ते मारोगी तो भी नहीं खुलेगा। हनुमान जी को पुराने जमाने से हाथी को और शेर को पूंछ बांध सकता है तो इनकी चुटिया को बांध दिया था, बोला देखो इसको अभी यहां से ये आनंद लेने दो। अब हनुमान जी निराश हो गए, कहां सीता होगी। वाल्मीकि रामायण में तुलसी और विभीषण से मुलाकात का वर्णन नहीं है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में विभीषण से मिलने का संकेत किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं सीधे अशोक वाटिका में हनुमान ने देखा कि एक दुबली पतली विरह में स्त्री बैठी है पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर हनुमान छोटे रूप में बैठे कि अगर ये सीता होगी तो सुबह सूर्य को प्रणाम जरूर करेगी, तो मुझे विश्वास हो जाएगा। सुबह हुआ, सीता ने सूर्य को प्रणाम किया और विश्वास पक्का हो गया, अब हनुमान प्रतीक्षा कर रहा है। राक्षसियां सब आ गई। तब तक उस दिन रावण मिलने आया बहुत सी स्त्रियों को लेकर, और सीता ने फिर भी एक तिनका बीच में रख दिया, कहा रावण ये तिनके के समान मैं तुमको जानती हूँ, समझती हूँ, इससे ज्यादा तुम्हारा महत्व मेरे लिए कोई नहीं है और मैं पुरुष से बात नहीं करूंगी, मैं पृथ्वी की पुत्री हूं, ये तिनका मेरा भाई है, मैं भाई को बीच में खड़ा रख के बात कर रही हूं तुमसे। आज तुम समझो मैं अपने बल से तुम्हें भस्म कर सकती हूं, लेकिन इसमें राम जी की महिमा नहीं होगी, और ये तुम बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आज या कल या कभी में आपकी इच्छा पूरी होगी, अब तुम्हारे मृत्यु की तुम प्रतीक्षा करो। रावण क्रोधित होकर कहता है बाकी एक महीना बचा है, कैसे भी इसको मनाओ, नहीं तो काट देना इसको। वाल्मीकि रामायण दिखाया, जो पीछे स्त्रियां खड़ी थी वो कह रही थी सीता को, ये ऐसे ही कहता है इसका चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा, अब हम इसको जानती। रावण ये कह के चला गया। फिर थोड़ी देर के लिए राक्षस ने सीता को घेरा, हनुमान ऊपर बैठा है कि किस तरीके से मैं अब नीचे जाऊं, तो उन्होंने रामायण गाना ऊपर शुरू किया, कैसे रामचंद्र का प्रकट हुआ, कैसे वनवास में आए। तो सीता को बड़ा आश्चर्य लगा, सीता ने कहा कौन है मेरे को प्राण रखने का सहारा बन रहा है। तब ऊपर से हनुमान जी कूद के नीचे आते हैं। अब हनुमान जी कूद के नीचे आते हैं, इससे भी 5 मिनट पहले समझ लो त्रिजटा जो विभीषण की बेटी है वो राक्षसियों को कहती है, राक्षसियों सुनो सुनो, अभी मैंने स्वप्न देखा है, कोई वानर राम जी का भेजा हुआ दूत यहां आया है और राम जी यहां आएंगे और ये वानर आग लगाएगा लंका को। हनुमान बोलता है ये प्लान में तो नहीं है, अच्छा है याद दिलाया, ये तो अच्छा आइडिया है। हनुमान ने उसका ये आइडिया पकड़ लिया और कहा अब इसको सताओ मत। तब से सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि कल, आज नहीं तो कल हमारे ऊपर दंड पड़ेगा। तब सब चली गई छोड़ के अकेली सीता को, और सीता कह रही चोटी का निकाल के डोरी के मैं फांसी खा लूं, ऐसे अभी रावण गया है कितना दुख भोगूंगी। तब तक हनुमान जी आगे आए। हनुमान जी के आते ही सीता ने कहा तुम कोई माया का रावण रूप धारण करके नहीं आए? नहीं माता, मैं राम जी का दूत हूं, तो राम जी की पहचान बताओ। हनुमान जी ने राम जी के सब चिन्ह बताए और राम जी को, सीता को राम जी क्या कहते थे एकांत में प्रिय, जो भी शब्द वो कहा, और फिर अंगूठी दी, और अंगूठी को देख के सीता बहुत प्रसन्न हुई, राम जी से जैसे मिलन हो गया। आज प्रसन्नता में सीता को हनुमान कहते हैं मैया तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, अभी मैं आपको राम जी के पास ले चलता हूं। सीता ने कहा बेटा तुम तो छोटे हो, मुझे कैसे उठाओगे? हनुमान ने बड़ा अपना रूप धारण किया। सीता ने कहा बेटा समर्थ हो तुम, कर सकते हो ये, लेकिन बेटा मैंने जानबूझ के पर पुरुष को स्पर्श कभी नहीं किया है, मैं बेबस थी, मुझे रावण उठा के आया है, तुम मेरा बेटा हो लेकिन हो तो पुरुष, में तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती, और फिर हनुमान रावण मुझे चुरा के लाया, तुम मुझे यहां से चुरा के ले जाओ, तो इसमें राम की महिमा क्या है? और फिर संभवतः तुम जब ऊपर उड़ोगे तो ये राक्षस तुम्हें लड़ाई करें, और कहीं मैं समुद्र में गिर जाऊं तो रावण को रामचंद्र को कितने दुख होगा। बेटा रामचंद्र जब यहां आएंगे मुझे ले जाएंगे तभी उनकी महिमा होगी, और यही मेरा गरिमा इसमें है। ये सीता कह सकती है और कोई ऐसा नहीं कह सकता है, बंदी हो और 10 महीना पूरा हो गया हो और ऐसा मौका मिले तो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। अब हनुमान जी कहते हैं मां भूख लगी है, बेटा ये तो बड़ा रावण का खास अशोक वाटिका है, पेड़ों गिरा हुआ फल खा लेना। बोलो ठीक है माता जी, गिरा ही खाऊंगा, सारे पेड़ों को ऐसा हिलाया सारा ही फल गिर गया। अब जो फल गिर गया तो जामुनी नाम का जो राक्षस था जो रक्षा करता था अशोक वाटिका का, वो क्या, वो असुर ऐसा था कि वो मदरा का एक उसने तालाब बनाया, उसके अंदर पड़ा होता था, कौन गिलास भरेगा कौन पिएगा, अंदर जब चाहे तो पिए फिर सो जाए, वो मदरा के कुंड में पड़ा रहता था। वो जागा ऐसे, अरे कैसे पेड़ हिल रहे हैं, और हनुमान के सामने खड़ा हुआ, बोला तुम कौन हो। हनुमान ने उसको, वो तो हनुमान के घुटने से भी छोटा लग रहा था, हनुमान ने उठा के बोला देखा तुम्हारे वो कौन हो, ऐसे करके ऐसे पटका नीचे और जामुनी का सर फूटा और बाकी राक्षस आए सब मार दिए। अब ये समाचार रावण को मिला, पांच सब बड़े सेनापति मोकल भेज दिए। हनुमान जी ने उठा के दो चार जो खंभे पड़े थे मार दिए। अक्षय कुमार हनुमान रावण का बेटा आया, अक्षय कुमार को हनुमान ने आकाश में युद्ध करने लगा, उसको मार दिया। तब मेघनाथ को भेजा रावण ने, मेघनाथ ने लड़ाई थोड़ी देर की, बोला ऐसे तो ये बंधेगा नहीं, ब्रह्मास्त्र को चलाया और ब्रह्मास्त्र से, अरे हनुमान ने कहा ब्रह्मास्त्र को मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, कुछ नहीं करेगा लेकिन ब्रह्मास्त्र का सम्मान करता हूं, इसको बंधने दो, मुझे ले जाए तो मैं देखूं तो सही वैसे रावण है कैसा। जैसे ब्रह्मास्त्र में हनुमान चुप करके बैठा, वो मूर्ख राक्षस दूसरे हस्ते बांधने लगे। मेघनाथ कहता है मूर्ख, एक बार ब्रह्मास्त्र के ऊपर रस्सा बांधा तो ब्रह्मास्त्र अपने आप चला जाएगा, लेकिन हनुमान को तो जाना नहीं था, उसको तो देखना था, वो पकड़ के ले आए। हनुमान को जब रावण के सामने लाए, पूरा हमारा अशोक वट का तुमने विनाश कर दिया, मेरे पुत्रों का वध कर दिया, अशोक कुमार का, कौन हो। राम का दूत हूं, हनुमान मेरा नाम है। अपना आसन बना के बैठ गए, उसको तो मृत्यु बन जानी चाहिए। हनुमान जी कहते हैं सीता का समाचार लेने आया था, अभी भी मैं आपको ये अच्छा मशवरा देता हूं, लंकेश सीता को वापस भेजो, अपने आराम से लंका में राज करो, अपने विनाश से बचना है तो ये मेरा संदेश है आपको, इसका मार दो। तो विभीषण ने उठ के कहा दूत को नहीं मारा जाता महाराज, ये मर्यादा है। आज विभीषण ने ये हनुमान की सहायता में शब्द कहे। रावण कहता है जो इससे जिससे बहुत प्रेम होता है पूछ से इस पूछ को जला दो। पूछ के ऊपर कपड़ा बांधा, सबको मालूम है, हनुमान जी को आग लगाई, हनुमान जी ऊपर उड़ा और पूरी लंका के अंदर घूमा और सब घर जलने लगे और सब जगह जब आग लगने लगी, हनुमान देखता है मेरी पूछ में गर्मी नहीं है, बात क्या है, इतनी आग में सब हाहाकार कर रहे हैं। और फिर डर लगा कि कहीं आग अशोक वाटिका में लगे और सीता माता, नहीं 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 उसकी कृपा से तो मेरी पूछ नहीं जल रही है। और माता सीता ने ये देखा तो कहती है हे रामचंद्र, हे वायुदेव, आप ऐसे चलो, मेरे हनुमान बच्चे को आग का स्पर्श नहीं होना चाहिए। हनुमान कहता है सबको आग लग रही है, मेरे को लगाए कोई आइसक्रीम लगा रहा है, पूछ के ऊपर ठंडी ठंडी लग रही। और असल में वायुदेव ने हनुमान को जलने नहीं दिया, क्योंकि वायुदेव जब आग किसी चीज को जलाती है ना तो बगैर हवा के नहीं जला सकती, हवा होगी तब आग जलाएगी। तो हवा है सारथी, उसका नाम नहीं होता है, नाम आग का होता है लेकिन काम वायु करता है। तो आज वायु ने देखा कि अग्नि की मैं सहायता करता हूं, अग्नि मेरे पुत्र को कैसे जलाएगी, और वहां सीता प्रार्थना कर रही है। हनुमान एकदम समुद्र में कूदा, अपनी पूंछ बुझाई, लेकिन देखा कि देखूं तो सही सीता अब ठीक है कि नहीं। सीता माता को देखा कि ये तो इसकी प्रार्थना से मैं बचा हूं, प्रणाम किया, बोला मां अब मैं वापस जा रहा हूं, मैं सब देख लिया यहां का। तब फिर सीता ने कहा देखो राम जी को संदेश देना, अब 12 महीने का मेरे को समय दिया है, उसको याद करा देना कि एक बार इंद्र के बेटे जयंत ने केवल कौवे के रूप में मेरे को एक नाखून मारा था, आपने तिनके में ब्रह्मास्त्र डाला, उसको त्रिलोकी में कहीं जगह नहीं मिली थी, वो मेरे चरणों में आके गिरा था, आज तक रावण कैसे जीवित है। और जाते समय जो माता जी के सर के ऊपर रखने वाली चूड़ामणि थी वो हनुमान के हाथ में दी के रामचंद्र को ये आप प्रमाण देना कि मुझसे आप मिले हो, चंद्रकला दे दी। और हनुमान जी फिर आकाश मार्ग से उड़े हैं और जैसे नीचे वानरों ने देखा है ऊपर से किलकारी मारता हुआ उतर रहा है। अब जामवंत कहता है इसको सीता मिल गई है, तब इतना प्रसन्नता के साथ आ रहा है। हनुमान जैसे नीचे उतरा है बोला चलो सीता का पता लगा। अंगद कहता है अभी हम सब जंप लगाते हैं, चलते हैं रावण को मार के सीता को ले चलेंगे। जामवंत तब कहता है दूत को उतना ही काम करना चाहिए जितना कहा गया है। हमको पता लगाने को कहा गया है, मारने लड़ने को नहीं कहा गया, इसलिए जल्दी चलो समाचार दें। अब तीव्र गति से भागते हुए किष्कंधा के बाहर एक बहुत सुंदर मधु का बगीचा था अपने सुग्रीव का अपना। अब ये भूखे प्यासे सीधे चले गए बगीचे में और मधु पीने लगे, और दधी जो सुग्रीव का बेटा उसको देखभाल करता था उसने रोका, मत पियो। अब अंगद कहता है सब भूखे हैं पीने दो। वो भागता हुआ सुग्रीव को कहता है महाराज आपके बगीचे की सारी मधु को अंगद और हनुमान और जाम्बवत वो सेना सब पी रही है उनकी। और सुग्रीव हंसता है कि आज वो अगर मेरे बगीचे में मधु पी रहे इसका मतलब सीता का पता लगा है, नहीं तो वापस आने की भी हिम्मत नहीं करते। और अच्छा समाचार जाओ जल्दी लेके आओ। और फिर कहता है बेटा दधी तुमने अंगद को रोका क्यों? अंगद मजूबराज है, उसका अधिकार नहीं है बगीचे के ऊपर, तुमको नहीं रोकना चाहिए था। सुग्रीव ने बात बताई, दधी ने आके आते ही कहा भैया अंगद आपका बगीचा इतना है जितना पिताजी का राजा का है, मैंने आपको रोका मुझे क्षमा करना। अब अंगद कहता है आप रक्षक थे मुझे आपसे आज्ञा लेनी चाहिए थी, मेरी इसमें गलती है। और यहां वाल्मीकि जी लिखता है जो अपनी गलती को स्वीकार करे उसको महान माना जाता है, वो महान कहा जाता है। आज ये भागते हुए आए हैं और हनुमान पीछे बैठा है। अंगद और जामवंत ने पहले सारा समाचार दिया है कि सीता का पता हमारे हनुमान जी लगाकर आए हैं। तब राम जी ने हनुमान से पूछा है, हनुमान ने अंगूठी दी है और जो चंद्रकला दी है रामचंद्र को, तो सीता का जैसे मिलन हो गया। और हनुमान को ऐसे आलिंगन करके कहा है तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो, ये छाती तो भगवान की सिर्फ लक्ष्मी का स्थान है। आज भक्त हनुमान को भगवान ने छाती से लगाया है। बोला लक्ष्मण से भी तुम मुझे डबल प्यारे हो, डबल प्यारे हो, लक्ष्मण वही खड़ा है। बोला कल लक्ष्मण मूर्छित होगा तब उसको भी जीवित करने वाले आप रहोगे, इसलिए आप तो मुझे बहुत प्यारे हो। अब कहता है सुग्रीव अभी मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज ही प्रस्थान करो यहां से। अब आगे आगे देखो रास्ता देखने वाले और कोई पानी में विष न मिला जाए, इसलिए आगे नल नील आप चलो, सेना पीछे चलेगी। और अब ये सारी रामचंद्र की जीरो बजट आर्मी रवाना हुई है, ये दुनिया की पहली आर्मी है जो जीरो बजट है। अब न वानरों को वर्दी चाहिए, न असला चाहिए, न खाने के लिए कुछ चाहिए, ये जीरो बजट आर्मी ऐसी आज तक किसी ने नहीं बनाई है। पेड़ के ऊपर सोते हैं, पत्थर उठा के मारते हैं, फल फूल खाते हैं, कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और इतने वानरों को साथ संभाल के ले चलना ये राम जी की कुशलता का कमाल है कि इतने वानर संयम से चले, एक वानर भी संयम में रखना बहुत मुश्किल है। और यहां लाखों वानरों की सेना को लेकर अब समुद्र के तट के ऊपर पहुंच गए, यहां तक तो पहुंच गए। और अब उस तरफ चलते हैं रावण, रावण ने हनुमान एक के लंका को जलाने के बाद मीटिंग बुला के ये दूत इतना सारा हमारा नुकसान पहुंचा के बड़ी हानि करके गया है। तब विभीषण ने उठ के कहा महाराज ये एक दूत इतना कर गया है, इस तो पीछे कितना हमें पता लगा है गुप्तचरों से कि सुग्रीव सेना लेके समुद्र के दूसरे तट पे पहुंच गए हैं। और सेना का समुद्र है, असंख्य वानर भालू की सेना आई है, और रीछ और जामवंत और ये। अब अच्छा ये है हमारे लंका का सुरक्षा इसमें है कि सीता को वापस दे दीजिए। रावण ने कहा तुम काय हो, कमजोर मुझे करते हो। मेघनाथ कहता है चाचा आप ऐसे कैसे बोलते हैं, हमारे बल के सामने वानरों का बल क्या हो सकता है। दूसरे दिन अकेले विभीषण ने जाके कहा कि भैया अब मैं आपको एक बार कहता हूं आपका हितेशी, ये पर नारी को यहां रखना अपने विनाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अब रावण ने कहा कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे को जीवित छोड़ता हूं, तुम यहां रहने के लायक नहीं हो। तब विभीषण ने कहा अब मैं जन्मभूमि को और अपनी जननी माता को नमस्कार करके चार अपने मंत्रियों को लेके आकाश मार्ग से उड़ा है, और दूसरे तरफ आकाश में खड़े खड़े समुद्र के दूसरे किनारे रामचंद्र को कहता है मैं आपकी शरण में आया हूं रामचंद्र। ये सुनते ही सुग्रीव ने कहा ये तो रावण का भाई है, राक्षस है, इसको बंदी बना देना चाहिए। अंगद ने कहा इसको पकड़ लीजिए। हनुमान कहता नहीं नहीं इसने कहा था कि दूत को नहीं मारना चाहिए, ये अच्छा है। राम जी ने सब मीटिंग बुला के कहा देखो आप सब अपना राय दे दो, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सक्रदेव पर पना, एक बार कोई कह दे कि राम मैं आपका हूं, याचते ये याचना करे अम त्वम मैं आपका हूं, तो उसको अभयम उसको भय से मुक्त कर देता हूं, ये मेरा वचन है। कोई अच्छा हो तो मैं शरण में लूंगा, ऐसे नहीं किसी में अच्छा गुण होंगे तब मैं शरण में लूंगा, ये अच्छा नहीं, जैसा भी है जो मेरे शरण में आएगा उसको मैं शरण में लेता हूं। हनुमान तुम कहते हो अच्छा है इसलिए शरण में लो, आधा सच्चे, कैसा भी हो शरणागत को शरण में लेना चाहिए। ये रामचंद्र का एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का, शक्रदेव परपना, एक बार कोई कह दे मैं आपका हूं, बस इतना कहने के बाद वो निश्चित है उसकी रक्षा करना ये मेरा धर्म है। उसका दोष में शरणागत में दोष नहीं देखा जाता। अब देखते हम शिला प्रभुपाद अगर दोष देखते उन हिप्पियों में तो ये भक्त बनता, ये पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना का प्रचार होता नहीं होता। तो शरणागत में दोष नहीं देखा जाता है। मां बच्चे के अंदर मल मूत्र में होता है तो क्या उसको हाथ नहीं लगाती, उसी को धो के साफ तो मां करती। तो शरणागत का और आज विभीषण का भगवान ने स्वीकार किया है शरण में, और जैसे विभीषण नीचे उतरा है राम जी ने कहा समुद्र का पानी लाओ, इसको अभिषेक करके लंकेश बनाते हैं, लंका का राजा अब तुम हो विभीषण, आई राम जी ने लंकेश बना दिया। तो सुग्रीव ने कहा कि कल हनुमान अगर कल रावण आके आपका शरण ले तो रामचंद्र क्या करेंगे। बोला कोई चिंता नहीं, अभी हमारा अयोध्या का राज पड़ा है, हम दे देंगे उनको, आए तो सही वो आएगा नहीं, लेकिन हमको राज की लालच नहीं है, शरण में आ जाएगा उसके लिए। तो अब वो अब कहा कि समुद्र कैसे पार करना चाहिए, तो विभीषण पहली बार मित्र बना है, विभीषण कहता है समुद्र की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान ने कहा अभी अभी मित्र बनाए, अभी एक इसने सलाह दी है, इसका परामर्श है। तो कुछ घास के ऊपर दो दिन राम जी बैठे, कुछ रास्ता नहीं मिला। तीसरे दिन राम ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ तो, और धनुष के ऊपर बाण का अनुसंधान किया है, सारा समुद्र ऐसे उबलने लगा है, सारे जलचर हाहाकार करने लगे। समुद्र बाहर खड़े होके हाथ जोड़ के कहता है आपको पहचानने में गलती हो गई, हमारे ऊपर कृपा करना, वैसे आप जैसे चाहो वैसे जा सकते हो, लेकिन मर्यादा का पालन करना हो तो आपकी सेना में नल और नील ये शिल्पकार जो बड़ा है देवताओं का क्या नाम विश्वकर्मा के पुत्र हैं, ये जहां पत्थर डालेंगे वो पत्थर तरेंगे, आपकी सेतु बन जाएगी, ये भी हनुमान की तरह उद्दंड थे छोटे बच्चे, ऋषियों के पूजा के सामान पानी में डालते थे, अब ऋषियों ने कहा जो चीज पानी में डालोगे तैरती रहेगी, अब तब से इनको शराब आज काम आ गया, अब पत्थर लाके डालें तो पत्थर तरे तो सही लेकिन आपस में मिले नहीं, क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग लगाई, एक के ऊपर रा लिखा दूसरे के ऊपर म लिखा, दो डाला रा मा राम, पत्थर आपस में जुड़ गए बगैर सीमेंट के जुड़ गए, ये राम से पत्थर जुड़ गए। 5 दिन में 100 योजन लंबी और 10 योजन चौड़ी, 5 दिन में ये पुल तैयार हो गई और पुल तैर रही है ऊपर। राम जी बैठ के देख रहे थे कि ये राम लिख के डाल रहे हैं, पत्थर तर रहे हैं। राम जी ने 2 पत्थर उठाए, अकेले बैठे थे देख रहे थे, डाले पानी में डूब गए। हनुमान तो बार बार राम को देख रहा था, उसने जो देखा राम जी को प्रणाम करके कहा आप अगर पत्थर आपके नाम से ये सब तर रहे हैं, आप जिसको अपने हाथों से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा, वो कहां से तरेगा, तो भगवान आप संकोच नहीं कीजिए इसका, ये आपके नाम के बल से सब तर रहे हैं। यहां ये वो भी कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है लेकिन प्रचलित रामायण एक है, नाम उसका अच्छा है, उसमें वो गिलहरी की कथा है। वो छोटी सी गिलहरी राम की सेवा के लिए समुन्द्र में पानी से गीली होकर रेत को डाल रही है, हनुमान ने कहा हट जा रास्ते से मर जाएगी, बोला नहीं मेरी शक्ति है उतनी, मैं सेवा कर रही हूं, आप अपनी शक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो हनुमान जी उसने पूंछ के ऊपर पांव दिया कि देखो कितना कष्ट, पूंछ थोड़ी लंबी हो गई, चिल्लाती हुई गहली गिलहरी राम जी के पास गई, राम जी ने गिलहरी को गोद में लिया, उंगलियों से हाथ घुमाया, क्या हुआ, बोला हनुमान ने मुझे पीड़ा दी है, बोला क्या किया, बोला पूंछ के ऊपर पांव करके लंबा किया, बोला क्या दंड दे हनुमान, बोला इसकी पूंछ भी लंबी कर दो, बोला मैं लंबी कर देता हूं उसकी पूंछ, अब ठीक है अच्छा जाओ, तो वो गिलहरी के ऊपर ये पांच भगवान के उंगलियों के निशान अभी ऐसे के ऐसे पड़े हैं, उसको ये वरदान है, और हनुमान की पूछ लंबी हुई तो काम आ जाएगी आगे फिर लंका जलाने के लिए। सो एक और भी कथा है कि यहाँ पत्थर सब ला रहे थे तो हनुमान हिमालय चले गए, गिरिराज को उठा के ला रहे थे। जब वो वृंदावन के क्षेत्र में आए तब समाचार आया कि सेतु तैयार हो गई, अब जरूरत नहीं है, अब वहीं रख दिया गोवर्धन को। गोवर्धन कहते राम की सेवा में नहीं ले जा रहे हो, आप इतनी देर मुझे लाए हो, क्यों नहीं ले जा रहे हो। हनुमान वहां जाके राम जी को कहा, ऐसे गोवर्धन कह रहा है, बोला गोवर्धन को कहो अभी तो तुम आते तो सेतु में रहते, मेरे चरण का स्पर्श होता, अब अगले अवतार में कृष्ण अवतार में जब इंद्र की आपदा आएगी तब मैं अपने कर कमल के ऊपर तेरे को धारण करके सारे ब्रज की रक्षा करूंगा। तो ये गोवर्धन के लिए ये ऐसा वरदान दिया है। और फिर सेतु जब तैयार हुई है तो विभीषण सेतु के, या इस वक्त सेतु के पास रावण के दो गुप्तचर वहां से, पहले एक सुक को भेजा और सुक वहां वानर बन के आया है और सारा देखभाल कर रहा है। इतनी देर में उसको पहचान लिया, पकड़ा और मारने लगे वानर, राम जी के पास आ गया। राम जी ने कहा इसको मारो मत, वापस भेजो। सबने कहा नहीं, हम उस उधर पहुंचे उसके पास इसको छोड़ना है। राम जी ने कहा मारना मत। अब का विभीषण दूसरे छोर पे खड़ा हो गया जाके कि वहां से कोई सेतु को नुकसान न पहुंचाए। 10 योजन सेतु के ऊपर सुग्रीव ने कहा राम जी आप हनुमान के कंधे के ऊपर चढ़ जाएं, और अंगद ने लक्ष्मण को कंधे पे चढ़ाया है। बाकी वानर सेना चली, सेना इतनी ज्यादा थी कि कुछ वानर तो ऊपर चलने लगे आकाश मार्ग से। तब तो सारे जलचर राम का दर्शन करने के लिए बाहर निकल के आए। ये तो सेतु वानरों ने बनाई थी, वो तो मगरमच्छों की सेतु, कुछ वानर उनके ऊपर चढ़ के जा रहे थे। तो कहते तीनों सेनाएं जा रही थी, एक तो आकाश मार्ग से जा रही थी विमान की सेना हनुमान के, कई वामन रूप थे, और कुछ तो जलचर के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, वो तो नेवी जा रही थी, और ये जो है ये तो बीच में से जा रही थे इस रथ के ऊपर। तो कहते हैं आकाश मार्ग वाले ज्ञान वाले हैं, वो तो अपने जोर से जाते हैं, ये जो चढ़ के जा रहे थे ये कर्म वाले हैं, लेकिन भगवान के साथ जा रहे थे ये भक्ति वाले हैं, इनके साथ भगवान था, भक्ति वालों के साथ भगवान था, बाकी अपने बल से जा रहे थे। दोनों तरफ से भक्तों के बड़े सुंदर भाव हैं। दूसरे तरफ सुबेल पर्वत की तलहटी पे पहुंचे, तब सुख को वापस रवाना किया। सुख ने कहा महाराज सेतु बन गई, सब यहां पहुंच गए। हाँ सेतु बन गई, ये तो कभी आज तक संभव नहीं है समुद्र के ऊपर किसी ने सेतु बांधी हो। यहां से श्री राम जी के इस कार्य से प्रेरणा मिलती है कि अगर काम पड़ जाए तो समुद्र के ऊपर सेतु बांधना भी मानव पुरुषार्थ करे तो कर सकता है, अपने काम को साधना है तो कुछ भी करना चाहिए। पांचवें स्कंद भागवत में किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी की उपासना करता है, वहां बहुत सुंदर प्रार्थना के श्लोक है। उसमें राम जी के अवतार का एक उद्देश्य लिखा है कि केवल रावण को मारने के लिए नहीं, मानव को शिक्षा देने के लिए राम जी के अवतार का मुख्य उद्देश्य है। और वहां शिक्षा में एक दो मिशन स्टेटमेंट है। एक मिशन स्टेटमेंट उसकी ये है कि अगर जीवन में ग्रस्त आश्रम में पत्नी का पाणी ग्रहण करे, हाथ थाम ले, तो फिर उसकी रक्षा के लिए समुद्र पार जाना पड़े या रावण से लड़ना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मर्यादा का पालन करना चाहिए, ये गृहस्थी के लिए शिक्षा है। और अगर आपको ये संकट पालना नहीं है, झंझट में पड़ना नहीं है, तो साधु बन के बैठ के भजन कर। तो दूसरा ऑप्शन ये वहां लिखा हुआ है। अब सुबेल पर्वत की तलहटी पे पहुंचे हैं, तब सुक और सार दोनों वानर बन के आए हैं। विभीषण ने पहचान लिया है। राम जी ने कहा अब तुमने सारी सेना देखी, विभीषण इसको सब दिखा दो और जाके रावण को कह देना कि कल हम आक्रमण करेंगे, आज अगर सीता पहुंचा सकते हो तो कल वापस चले जाएंगे, नहीं तो कल आक्रमण। सुख सारी डरते डरते जय राम जी की करते गए और रावण के वहां उतरे, जय राम जी की। हे रावण ने बोला क्या आज मैं लंकेश की जय हो, मार रहे थे रावण ने बचाया है, कहा है कल आक्रमण कर देगा। और यहां रावण ने अंगद को भेजा है कि एक और दूत भेजना चाहिए। अंगद ने जाके कहा कि कौन से आप रावण हो, एक तो मेरे पिता बाली ने कांख में दबाया था वो हो, या अही रावण के वहां पकड़े गए थे जहां बच्चे मार रहे थे वो, या कार्तविक अर्जुन ने जहां बेदी बनाया था वो, कौन से रावण हो आप, मैं बाली का पुत्र आपको राम जी का संदेश देने आया हूं, सीता वापस देके युद्ध को रोकना चाहो तो रोको, नहीं तो कल से आक्रमण होगा। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि चार लोगों ने उसने को पकड़ने का प्रयास किया, उसने चारों को पटका और आकाश में ऊपर गया और उड़ते ही कहा हनुमान एक लंका जला के गया है। ऐसे सारे वानर इससे ज्यादा बलवान है, वो तो एक सैंपल हमने भेजा था। और तुलसीदास की रामायण में उसने पांव लग जमीन पे रखा के अभी इसको हटा के दिखाओ। तो जो भी है अलग कल्प में अलग भेद से ये लीलाएं हो सकती हैं। और बैठे बैठे रामचंद्र कहते हैं देखो तो सामने बिजली चमक रही है, काली घटाएं छाई हैं, बादल गरज रहे हैं, ये विभीषण बरसात तो नहीं होगी? विभीषण कहते हैं नहीं हे रघुनाथ, वो जो सामने काली घटा जैसा दिख रहा है ना, वो रावण का मुकुट चमक रहा है और जो हीरे है ना वो सामने, ये तो मंदोदरी के हीरे चमक रहे हैं और जो नृत्य के बाद बज रहे हैं ये तो लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं। उस वक्त राम जी ने एक तीर का अनुसंधान किया, रावण का मुकुट उड़ के चला गया और हीरे मोती उड़ के चले गए। अब रावण कहता है मेरा सर कटता तो वापस आ जाता, ये तो मुकुट चला गया। घर बैठे को और उधर बैठे को देखा तो यहां सुग्रीव ने देखा कि रावण उधर बैठा, एक छलांग मारी सीधा उधर गया, उसको नोच के पकड़ के नीचे गिर के लड़ने लगा। जब दोनों लड़ते लड़ते फिर जंप मारी वापस आ गए। राम जी ने पूछा कहां गए थे सुग्रीव? बोला वो सामने बैठा था, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं उसको दो थप्पड़ मारने गया। बोला किसकंदा के राजा हो, मेरे मित्र हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरी सारी सेना और आप हमारे इस मित्र हो, ऐसा मत करना। दूसरे दिन आक्रमण की तैयारी हो गई, चार दरवाजे थे, चार हिस्सों से सेना को अंदर रवाना किया, एक तरफ हनुमान गया, एक तरफ राम स्वयं चले गए हैं, एक तरफ सुग्रीव को भेजा है। अब सेनापति मरते गए, ये तो युद्ध तो इनका कोई 120 दिन से अधिक कुछ समय है उस तक चला है। अब जब बहुत सेनापति मर गए तो सबको ये कथा मालूम है कि रावण ने जाके कुंभकर्ण को उठाया, कैसे उठाया वो कथा को छोड़ देते हैं। कुंभकर्ण उठ के जब आया है, कहा क्या तक क्या क्यों भैया मुझे वो जगाया, क्या समस्या है? बोला सामने बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, सारे सेनापति मारे जा चुके। बोला क्या बात क्या थी? बोला वो सीता को मैं लाया हूं। बोला लाया थी तब हमको पूछ गए थे क्या? जब उठाने गए थे तब पूछ के नहीं गए, अब समस्या में हो तब पूछते हो, पराई स्त्री को लाए हो तो विनाश हो रहा है, लेकिन भाई हो मैं क्या करूं, अब चिंता मत करो मैं जाता हूं। और लड़ने के लिए कुंभकर्ण आगे बढ़े हैं। रामचंद्र कहते हैं विभीषण ये पर्वत कहां से चलता हुआ आ रहा है, ये पूरा पहाड़ लगता है चलता हुआ आ रहा है, और जैसे आया है ऐसे जैसे ना आदमी चने खाता है ऐसे ऐसे बंदरों को उठाए ऐसे मुंह में डाले और बंदर उसके ऊपर घूम रहे हैं जैसे पर्वत के ऊपर घूमे, बड़ा भयानक है। चारों ओर से मारा मारी मचा दी और सुग्रीव को कांख में दबा के वापस जाने लगा। हाहाकार मच गई बानरों के अंदर, सुग्रीव जैसे सचेत हुआ उसके कांख को काटा, वापस लौट के आया। अब कुंभकर्ण क्रोध में वापस लौटा है और आते ही विभीषण के ऊपर वार किया है। तब भगवान रामचंद्र ने विभीषण को अपने पीछे रक्षा में ले लिया है और कुंभकर्ण के ऊपर भगवान रामचंद्र ने वार किया है और कुंभकर्ण का संहार करके उद्धार किया है। यह समाचार सुनते रावण हिल गया कि कुंभकर्ण का भी वध हो गया। अब मेघनाथ की लड़ाई का समय आता है, मेघनाथ की माया की लड़ाई। एक तरफ तो सीता का कटा हुआ सर लाके दिखाता है राम जी को, अब किसके लिए लड़ रहे हो? इसके लिए लड़ रहे हो, ये तो मर चुकी है। राम कहता है हे सीते, विभीषण कहता है रामचंद्र रावण इतना सीता से प्रेम करता है कभी सर काटने का अधिकार नहीं देगा, ये माया का काम है, आप चिंता मत करो। और उधर रामचंद्र के ऊपर नाग फांस चलाया है, रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों मूर्छित खड़े हैं और विमान के अंदर सीता को लाके कहता है देखो नीचे राम मर गया लक्ष्मण मर गया, आप किसके लिए रो रही हो? सीता विलाप करने लगी तो त्रिजटा कहती है मरे हुए शव के ऊपर विमान नहीं चलता है, हमारा पुष्पक ये जीवित है। अब सीता को आश्वासन हो गया और हनुमान गरुड़ को लाया, नांग फांस खुल गए। अब राम लक्ष्मण फिर उठ के खड़े हो गए। अब माया का युद्ध करते हुए विभीषण कहता है इस वक्त ये मेघनाथ इंद्रजीत हमको माया के युद्ध में विचलित करके निकुंबला देवी के मंदिर में जाके यज्ञ शुरू किया है और उसका वरदान है ब्रह्मा जी का। अगर ये यज्ञ पूरा करके रथ के ऊपर बैठ गया तो ये मारा नहीं जाएगा, इसलिए अभी चलो यज्ञ चलते के ऊपर आक्रमण करते हैं। आगे चले हैं लक्ष्मण सेना लेकर और साथ में हनुमान अंगद और विभीषण गए हैं और ललकारा है यज्ञ करते हुए। पीछे मेघनाथ मुड़ के देखा विभीषण को, ए काका ये रास्ता तुमने बताया है, नहीं तो ये भेद का पता किसी को नहीं था कि मैं नुकुम्बला देवी के मंदिर में हूं। तो ये विभीषण के कारण अब घोर युद्ध हुआ है, देवता ऊपर देखने आए हैं। और पहले आपको सुना चुके हैं कि 14 साल जो नहीं सोए ब्रह्मचार्य का पालन करे और व्रत रखे वही मेघनाथ का वध कर सकता है। मेघनाथ को ये वरदान ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इंद्र को एक बार पकड़ के चला गया था और इंद्र को क्यों हराया था, इंद्र ने अहल्या का जो अपमान किया था उसके कारण, गौतम के शराप के कारण उसको एक बार हराना था, इसलिए बंदी बन गया था। आज मेघनाथ के मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध में आया, अब तक नहीं आया था। और रावण और राम का युद्ध भी बहुत लंबा चला है और उस युद्ध के अंदर रावण का रथ टूटा है, रावण वापस गया है। अब इंद्र ने देखा कि एक तरफ रथ के ऊपर और राम जी हमारे धरती के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, इंद्र ने अपना रथ ऊपर से भेजा है और इंद्र का रथ दिव्य और उनका जो मातली सारथी है वो नीचे उतर के आए हैं। राम जी उस रथ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं और अगस्त मुनि प्रकट होके कहते हैं, रामचंद्र आप सूर्य वंश में प्रकट हुए हो, आदित्य हृदय मंत्र का पाठ कर लीजिए। अब वाल्मीकि रामायण में ये 31 श्लोकों का बहुत सुंदर एक पाठ, आदित्य हृदय अपने बल को बढ़ा के विजय प्राप्त करने का, आज भी लोग करते हैं। राम जी ने आदित्य है ये पाठ किया है और उसके बाद रावण के साथ घोर जो युद्ध हो रहा था, रावण रामचंद्र को क्रोध नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है तो मारे कैसे। विभीषण के ऊपर जब रावण मारने को गया तो राम जी को क्रोध आया। भगवान को अपने लिए क्रोध नहीं आता है, लेकिन भक्त का कोई अहित करता है तो भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया है। आपको बताया था यहां तो मातली ने कहा, महाराज आप जानते हैं सब कुछ इसके ऊपर, अब ब्रह्मस्त्र का आप आवाहन करो। लेकिन एक कथा में आपको 2-3 दिन पहले बताया था, महाराज रघु का बाण जो रघु महाराज ने अनुसंधान किया था और ब्रह्मा जी ने कहा था ये वध तो राम का करे रावण का करेगा लेकिन अभी समय नहीं है, और विभीषण ने कहा कि ये मरेगा नहीं जब तक रघु का बाण नहीं इसको लगेगा, है कहां। हनुमान जी ने जाके रघु का बाण मंदोदरी के सामने ब्राह्मण ज्योतिषी बन के चले गए कि आज जय हो रावण की, जय हो लंकेश की। उसने कहा अब क्या कह रहे हैं, सब तो सर्वनाश हो गया, पुत्र सेनापति भाई सब मार गए, आप कैसे कह रहे हो। बोला कैसे मरेगा रावण, उसका तो रघु के बाण से मरेगा, रघु का बाण तो है नहीं राम के पास, आपको कैसे पता। मैं ज्योतिषी हूं सब जानता हूं। मंदोदरी कहती है हाँ रघु का बाण तो इस खंभे में ऐसी की पूजा करते हैं राम। और रावण हो समझ गया हनुमान, खंभे को तोड़ा बाण निकाला आके रामचंद्र को दे दिया। आज विभीषण, अब विभीषण ने कहा अब ये बाण आ गया, अब आप आक्रमण कीजिए। राम जी ने उस बाण का अनुसंधान किया है, 10 बाण 10 गर्दनों के ऊपर जो काटे पहले वापस आ जाएं, लेकिन आज उधर और 20 भाजुओं के ऊपर भुजाओं के ऊपर एक हृदय में रघु का बाण, वो तो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा बलवान है क्योंकि ब्रह्मा जी से आया था। आज 31 बाण का अनुसंधान किया है, रावण धराशायी होके धरती के ऊपर गिरा है। और श्री रामचंद्र भगवान की ये विजय दशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, आज रावण की विजय, रावण के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई है। अब इस विजय के बाद रोना धोना हुआ उसको हम नहीं कुछ कहते हैं। राम जी ने तत्काल कहा हनुमान सीता को समाचार दे दो के वानर सेना की विजय हो गई है। हनुमान जी भागते हुए गए हैं, माँ सीता आपको बधाई हो, सेना राम जी की सेना की विजय हो गई, रावण मारा गया। सीता खा बेटा मैं क्या उपहार दूं इस वक्त आपको, मैं बड़ी प्रसन्न हूं। कहते माता आपकी प्रसन्नता बड़ा उपहार है, अगर आप मुझे इजाजत देना, ये राक्षसी आपको बहुत सता रही थी, मैं इनको नोच दूं। सीता कहती है बेटा ये बिचारी रावण की अनुचर थी, जो उसने कहा वो वैसे किया। अब कुत्ता किसी को काटता है तो कुत्ते को थोड़ी हम काटते हैं। अगर रावण की राक्षसी ने मुझे दुख दिया और आप राम के भक्त इनको स्त्रियों को काटोगे, इसमें राम की महिमा नहीं होगी। बेटा इनको क्षमा कर देना चाहिए, ऐसा दुख देने वाले को क्षमा करने का ये सीता का जो चरित्र है ये वाल्मीकि को बहुत अच्छा लगा है कि सीता की करुणा कृपा उनके ऊपर भी है जो उनको कष्ट देती हैं। आज हनुमान यहां से लौटा है, रामचंद्र ने विभीषण को कहा है आप अपनी पत्नी को बेटी को ले जाकर स्नान सुंदर श्रृंगार करके सीता को यहां लेकर आओ। विभीषण त्रिजटा को और शर्मा अपनी पत्नी को ले गया है, सीता को श्रृंगार कराए। सीता का मैं जैसी हूं वैसे जाऊंगी नहीं, बोला राम जी का आदेश है, पालकी में उठाया है, चारों ओर डंडे वाले चल रहे हैं। अब तो वानर सब सीता को देखना चाहते हैं, भीड़ लगी तो डंडे वाले हटाने लगे। राम जी ने कहा सीता को कहो नीचे उतर के चल के आए। ये सारे वीर अपनी अपने जीवन का बलिदान के सीता के लिए दे रहा था, ये सीता माँ है इनकी, इनको दर्शन करने दो। वैसे भी विवाह में, युद्ध में, आपत्काल में, यज्ञ में स्त्री कहीं ऐसे आए जाए तो उसके ऊपर शास्त्र ने निषेध नहीं डाला है। और बाहर के पर्दे, बाहर का कोई बालकी जरूरी नहीं है, हृदय की पवित्रता ज्यादा महान है, या रामचंद्र की शिक्षा। अब सीता चल के आ रही है, वानर देख रहे हैं, राम जी के सामने सीता खड़ी है और मुस्कुराया एक दूसरे के सामने। फिर राम जी गंभीर होकर कहते हैं सीते सुनो, इक्ष्वाकु वंश की रक्षा करते हुए आपके अपहर्ता को हमने उचित दंड दिया दिया है, अब आप स्वतंत्र हो, 11 महीने यहां रही हो, आपको जहां चाहिए वहां जाओ। सीता ये सुना क्या, सब लोग कि जिसके लिए युद्ध किया है अब उसको कहते जहां चाहे वो जाओ। सीता कहती रघुनाथ अगर आपको ऐसे ही कहना था तो हनुमान के साथ मुझे कह दिया होता, वहीं मैं प्राण त्याग देती, यहां आने की आवश्यकता क्या थी। लक्ष्मण अब मेरे को जीने की कोई इच्छा नहीं है और मैं कहां जाऊंगी, आप लकड़ी ले आओ, यहां मेरी चिता तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश होती हूं। लक्ष्मण क्या सब सत्य के आलम में ऐसे खड़े हैं। लक्ष्मण ने राम जी की ओर देखा, राम ने कहा जैसे सीता कहती है ऐसे करो अनुज। लक्ष्मण लकड़ी लाया है, आग की तैयारी हो रही है। आकाश में ब्रह्मा जी आए हैं, शंकर आए हैं, इंद्र आए हैं और ये सारे देवता खड़े हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं रामचंद्र आप तो मानव का अभिनय कर रहे थे ब्रह्मा जी के वचन मेरे की रक्षा करने के लिए, आप साक्षात विष्णु हो, ये भगवती, ये तो सीता है आपके नित्य प्रेसी, ये आप क्या कर रहे हैं। राम जी गंभीर हैं, सीता ने अग्नि को परिक्रमा करके प्रणाम किया है, राम को प्रणाम करके अग्नि में प्रवेश किया है। अग्निदेव प्रकट होके स्वर्ण सीता जो असली अग्निदेव के पास धरोहर थी वो अपनी पत्नी सुहा को कहा कि अब वापस ये रामचंद्र को अर्पण करो। अब अग्नि परीक्षा से जैसे सीता निकली है अब राम जी के वाम भाग में आई है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा सीते वैसे अगर मैं आपको स्वीकार करता तो लोक निंदा करते कि स्त्री के लिए युद्ध किया था, आज अग्नि परीक्षा के बाद आप भी कलंक से मुक्त हो गई। तब आकाश में सब देवताओं ने कहा हम साक्षी हैं सीता पतिव्रता है, सती है। और तब शंकर जी कहते हैं रामचंद्र देखो आपके पिता दशरथ रथ के ऊपर स्वर्ग से आए हैं दर्शन करने के लिए। महाराज दशरथ ने ऊपर से ही कहा लक्ष्मण आपने राम जी के साथ जो सेवा निभाई है आपके ऊपर मुझे बहुत बड़ा गौरव है बेटा, और सीता जो ये परीक्षा ली है मेरे पुत्र राम ने, इसको क्षमा कर देना। और राम तुम जल्दी जाओ, तेरा राज अभिषेक होगा तब मुझे शांति मिलेगी। अब इंद्र बोल उठा कि जब हम देवता कहीं आते हैं तो आशीर्वाद जरूर देते हैं, अब राम जी आप क्या मांगते हैं। राम जी ने कहा ये वानर जो मेरे पीछे खड़े थे उन्होंने मेरा दर्शन नहीं किया, असुर ने इनका संहार किया है, आप अमृत की वर्षा करके इनको जीवित कर दो। नहीं तो मरे को जिंदा करना सामान्य काम नहीं है, लेकिन भगवान का आदेश है। इंद्र ने अमृत की वर्षा की है, जैसे सोए कोई उठा ऐसे सब वानर उठ के खड़े हो गए हैं। और तब कहा कि एक और वरदान, बोला दूसरा वरदान देना है, जहां ये हमारे वानर भालू रहे वहां हरे भरे पेड़ हो, फल फूल हो, जल हो, इनको कभी किसी चीज का अभाव नहीं होना चाहिए। और यहां से लक्ष्मण सुग्रीव आप जाओ, विभीषण का राज अभिषेक करो। अब राज अभिषेक हो गया तो विभीषण ने कहा आप हमारा आतिथ्य स्वीकार स्वीकार कीजिए आइए। राम जी कहता है 14 साल में से एक घड़ी भी कम हो गई तो वो भरत भैया प्राण त्याग देगा। अब पैदल बहुत लंबा सफर है। विभीषण कहता है ये पुष्पक विमान आपका, आप इसमें तत्काल जा सकते हैं। तब पुष्पक विमान का आवाहन हुआ है, राम सीता उसके ऊपर चढ़े हैं। तब विभीषण कहे हम भी आपकी लंका में आपके राज अभिषेक का दर्शन करेंगे। सुग्रीव भी ऊपर चढ़ाए, हनुमान अंगद चढ़े हैं। तो वानर कहते, वानरों को राम जी ने कहा अपने अपने घर जाइए, अब आप अपने परिवार से सुखी रहिए। सबने कहा जो चढ़ हम चलना चाहते हैं, जो चढ़ सकता है आ जाओ, हम तो किसी को ना नहीं करते। विमान आकाश मार्ग में उड़ा है। विभीषण से रावण का अंत्येष्टि क्रिया राम जी ने कराया कि मरने के बाद शत्रुता नहीं रहती है, ये मर्यादाएं हैं, अपने पास समय कम है। अब यहां से विमान जब उड़ा है तो सीता को राम जी कहते ये देखो सेतु बांधी है इस अपने नल नील ने और इनकी, और ये देखो आगे ये किसकंदा है, यहाँ हमको सुग्रीव मिला था, ये हमारी सहायता की है, और यहाँ ये वो जगह है जहां जहाँ जटायु ने आपकी रक्षा के लिए युद्ध किया था, ये अपनी पंचवटी आ गई। और इसके पहले किसकंदा में विमान को उतार दिया, कहा कि सुग्रीव की पत्नी रोमा को और बाली की पत्नी तारा को भी साथ ले लेते हैं, स्त्री अकेली सीता है तो दो और स्त्रियां भी हो जाएंगी। अब यहां से सीधे आके भरद्वाज आश्रम में विमान उतरा है, त्रिवेणी के तट पे भरद्वाज का दर्शन किया है। सीता ने ये गंगा को प्रार्थना की थी, मैया 14 साल के बाद वापस आके हम आपकी पूजा करेंगे, आज यहाँ सीता गंगा पूजा करेगी। वैसे सेतु बंध के पास भी वापस आके विमान उतरा, और रामेश्वर का जहाँ आज मंदिर है वहां सीता ने पूजा की है शंकर जी की। इसका वर्णन 2 पुराणों में अलग अलग है, धाम पुराण तमिल में उसमें अलग है, जाते हुए किया है वो कहते हैं, और दूसरी पुराण में है कि आते हुए किया है। और करने के लिए हनुमान जी लेने गए थे शिवलिंग, आने में देर होगी, मूर्त जा रहा था तो मिट्टी का सीता जी ने शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा हो गई। हनुमान लेके आया तो कहा इसको हटाओ, तो वो पूंछ डाल के मिट्टी का हटाया, हटे नहीं, वो भी आज उधर पड़ा है और बड़ा लिंग अंदर पड़ा है। तो ये रामेश्वर में पूजा हुई है, इसका वर्णन है। और भारद्वाज के आश्रम से राम जी कहते हैं हनुमान तुम जाके भरत को समाचार दे दो कि कल हम वहां पहुंचेंगे। और उनके भाव देखना, राज करने का भाव हो तो हमें राज करने की इच्छा नहीं है, हमें समाचार दे देना, और रास्ते में गोया को समाचार जरूर देना हमारे मित्र को। हनुमान जी तो तीव्र गति से गए हैं, गोया को समाचार दिया है, गोया भगवान के स्वागत के लिए आगे निकला है और हनुमान जी ने जाके भरत को समाचार दिया है। भरत ने तो गले लग के कहा आपने हमारे को जीवन दान दे दिया, राम का समाचार लाए हो। और फिर तो कहा भाई शत्रुघ्न तत्काल सारी अयोध्या को सिंगार दो, गुरुजनों को माता जनों को सबको, यहाँ कल यहाँ से राम जी की शाही सवारी निकलेगी, रथ तैयार किए गए। अब दूसरे दिन सब यहाँ तैयार होके आए हैं। हनुमान को कहते हैं अभी तक विमान नहीं दिख रहा है। हनुमान ने कहा वो देखो चांद की तरह चमक रहा है, ये विमान है। पुष्पक विमान उतरने से पहले भरत ने जाके विमान में ही राम जी के चरण पकड़ना चाहे और राम जी ने भरत को गले लगाया है। लक्ष्मण शत्रुघ्न मिले हैं और जैसे नीचे उतर के आए हैं गुरुजनों को प्रणाम किया है और बड़ी प्रशंसा की है राम जी ने कि गुरुजनों ये हमारे भैया सुग्रीव और हनुमान इनके बाहुबल से हम रावण जैसे बड़े लंकेश के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं। और अपने साथियों को कहते हैं ये गुरुजनों और माताओं की कृपा से हमको विजय मिली है। राम जी दोनों अपने भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। और फिर यहां से जटाजूट राम ने अपने हाथों से भरत का खोला है और यहां से अब सुबह राम जी विमान चढ़े हैं रथ के ऊपर, भरत सारथी बने हैं और एक तरफ से शत्रुघ्न चमन लेके खड़ा है, सुग्रीव खड़ा है, हनुमान जी आगे बैठा है। अब ये शोभा यात्रा निकली है और सारी अयोध्या में जो दीप जले हैं वो दीपावली हो गई। हनुमान राम जी वापस अयोध्या में आ गए हैं। दूसरे दिन कहा कि राज अभिषेक के लिए अब निमंत्रण भेजो, महाराज जनक भी आएंगे और अयोध्या केकई के पिताजी केकई देश से आएंगे, अश्वजीत और मामा आएगा युधाजीत, ये सब आएंगे। और सुग्रीव आप अपने वानरों को भेज के सारे तीर्थों का जल मंगाओ। अब दूसरे दिन राम जी का महान अभिषेक हुआ है, ये अभिषेक राज अभिषेक सीताराम का हो गया। अब इनका जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ मुकुट जो इक्ष्वाकु वंश में आता है, आज राम जी के मूर्धन्य सर के ऊपर जब धारण हुआ है तो जय जयकार हुई है सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। और उसी वक्त राम जी ने कहा भरत अब ये जितने अपने अतिथि आए हैं इनके लिए बहुमूल्य सारे उपहार लाइए, बड़े बड़े उपहार, सुग्रीव के गले में माला डाली है और जनक महाराज और उन सबको उपहार दिए हैं। एक उपहार राम जी ने दिया, सीता ही आप जिसको चाहो उसको दो। सीता कहती है मुझे हनुमान को देना था, देने में देर हो गई, आज हनुमान को माला देते हैं। हनुमान जी उस माला में राम जी ढूंढते हैं, ये कथा भी पुरानी है। सो इसके बाद सबको भगवान ने कहा अब आप अपने अपने राज में जाइए, सबको विदा किया। हनुमान लंकेश का पद दिया विभीषण को, कृष्णा किष्कंधा नरेश भरा भय सुग्रीव जी। अब हनुमान कहते भगवान सबको एक एक पद दिया, मुझे दो पद चाहिए। सबने कहा अभी तक तो तुम निष्काम सेवा कर रहे थे, दो पद क्या मांग रहे हो? बोला ये राम जी के दो चरण मेरे दो पद है, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। सुग्रीव तेरी सेवा पूरी हुई, अब सुग्रीव मुझे मुक्त कहो, मैं राम जी की सेवा में रहूंगा। यहां यह युद्ध कांड समाप्त होता है, इसके बाद उत्तर कांड है। ये कथा कौन बता रहा है? यहां तक की कथा लव कुश ने बताई, राम जी सुन रहे हैं और ये कथा अयोध्या में हो रही है, ये पहले दिन बोला था। अब यहां लव कुश ने कथा को बंद किया, उत्तर का मतलब इसके बाद क्या हुआ? तो राम जी ने पूछा आप कौन हो दोनों बालक का? हम ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। तो ऋषि वाल्मीकि को तक पहुंचे गए, पूछा बालक कौन है? कहा ये सीता के पुत्र हैं। अब सीता के पुत्र हैं तो फिर सीता को वहां लाया गया और उसके बाद क्या हुआ ये उत्तरकांड की कथा कभी समय होगा तब करेंगे। अब आज के कथा को यह विराम देते हैं। राम जी का राज तिलक हो गया। उत्तर रामायण में बहुत अच्छी उत्तरकांड में कुछ कथाएं हैं, कब समय हुआ तो फिर उसका रसास्वादन करेंगे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धन्यवाद बहुत बहुत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय